بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کے سبھی شروتاؤں کو زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے. پریہ شروتاؤں, آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی 207ویں سے 209ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں. تلاوت کا شرح پایا ہے شری سبز علی نے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتین کرپاشیل اور دیاوان ہے, اور لوگوں میں وہ بھی ہے جو ایشور کی مرضی کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے, اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتینت کرونا میں ہے. ہے ایمان والو, تم سب پورن روپ سے اسلام میں پروشت ہو جاؤ اور شیطان کے پچنوں کا انسرن نہ کرو, کہ نسندے وہ تمہارا کھلا ہوا شترو ہے. फिर यदि तुम स्पष्ट निशानियों के आ जाने के बाद भी लड़खड़ा गए तो जान लो कि निसंदेह ईश्वर अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। आज शनिवार है, आज़र की 5, जमादियुलूला की 1 और नवंबर की 26 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीतिक चर्चा, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे उज्जवल भविष्य और अंतिम कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। अब आप सैयद मीसम और मरियम मेहरदादी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। वरिष्ठ नेता ने कहा कि ईरान में हालिया दंगे तेहरान पर दबाव डालने की पश्चिम की रणनीति का हिस्सा है। ईरान के राष्ट्रपति ने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी है। तेहरान ने कहा कि हम पर आरोप लगाने के बजाय लंदन अपने गिरेबान में झांक कर देखे। अमित शाह ने भारत के इतिहास को पुनः लिखे जाने पर बल दिया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान के इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने स्वयं सेवी बल बसीच के सदस्यों से मुलाकात में कहा है कि बसीच को विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय रहने की जरूरत है। बसीच सप्ताह के अवसर पर शनिवार को तेहरान स्थित इमाम खुमैनी हुसैनिया में बसीज संगठन के सदस्यों से मुलाकात में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने कहा, आप लोगों और भविष्य के बसीजियों से मैं कहता हूं कि आप लोग सिर्फ सामरिक क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों को धर्म शास्त्र और विज्ञान के मैदान में भी सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में बसीजियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे परमाणु वैज्ञानिक भी बसीजी रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई का कहना था कि बसीजी लोगों की निष्ठा पूर्वक सेवा करते हैं और बिना किसी फल की आशा के राष्ट्र को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। वरिष्ठ नेता का कहना था कि ईरान की लड़ाई दंगाइयों के एक समूह के साथ नहीं है जिन्होंने हाल ही में देश में उपद्रव मचाया था, बल्कि मुख्य लड़ाई वैश्विक साम्राज्यवाद के साथ है। उन्होंने उल्लेख किया कि देश में हालिया दंगे ईरान पर पश्चिम के दबाव का ही हिस्सा हैं, ताकि वो वार्ता में अपने अधिकारों से समझौता कर सके, जो वाशिंगटन की प्रतिबद्धता में कमी की वजह से गतिरोध का शिकार है। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रूप से जानकार होने का दावा करते हैं, लेकिन समाचार पत्रों और इंटरनेट पर उनके विश्लेषणों से वास्तव में दुख होता है। वे कहते हैं कि इन दंगों को समाप्त करने के लिए आपको अमेरिका के साथ अपनी समस्याओं का समाधान निकालना होगा। हालांकि अमेरिका के साथ बातचीत से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलने वाला है। सिर्फ एक ही चीज अमेरिका के साथ हमारी समस्याओं को हल कर सकती है, और वो है अमेरिका को फिरौती देना। लेकिन सिर्फ एक ही बार फिरौती देना नहीं, बल्कि वे स्थायी फिरौती की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण देश है। 1979 की इस्लामी क्रांति ने औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ संतुलन बिठाया और अहंकारी शक्तियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का गठन किया। हमारी क्रांति ने क्षेत्रीय लोगों के दिल और दिमाग को जीत लिया।
राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बात की। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ टेलीफोन पर परस्पर रुचि के विषयों पर वार्ता की। उन्होंने अनवर इब्राहिम के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ईरान और मलेशिया के बीच आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में काफ़ी क्षमताएँ पाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि इनसे दोनों राष्ट्रों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति ने मलेशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार पर बल दिया। इस टेलीफोनी वार्ता में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विस्तृत करने में मैं पूरा प्रयास करूंगा। ज्ञात रहे कि अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।
ईरानी हैकरों ने इसराइल के कब्जे वाले बैतुल मुकद्दस शहर में बुधवार को हुए दो धमाकों में से एक धमाके से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को हैक करके ऑनलाइन जारी कर दिया है। पिछले बुधवार को बैतुल मुकद्दस में रिमोट कंट्रोल से दो धमाके किए गए थे, जिसमें एक जायोनी की मौत हो गई थी। सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन न्यूज पेपर के हवाले से मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया है कि ईरानी हैकरों ने इसराइल की एक सुरक्षा एजेंसी के निगरानी करने वाले कैमरों को हैक कर लिया है और धमाके की एक वीडियो फुटेज भी जारी कर दी है। ज़ायोनी अधिकारियों ने इस वीडियो फुटेज की पुष्टि की है और कहा है कि इसे हैक करने के पीछे असाए मूसा नामक एक गुट का हाथ है। इस गुट ने फारसी भाषा में एक ट्वीट में इसराइल को संबोधित करते हुए लिखा है कि अब तुम्हें शांति से नहीं बैठने देंगे। कुछ जानकार सूत्रों का कहना है कि असाई मूसा नामक हैकरों के गुट ने इससे पहले भी इसराइल की कुछ महत्वपूर्ण साइटों को हैक किया था।
नासिर गनानी ने कहा है कि दूसरों को आरोपित करने के स्थान पर ब्रिटेन को अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान पर आरोप पड़ने के स्थान पर ब्रिटेन को अपनी क्षमता इस देश के लोगों की मांगों को पूरा करने में लगानी चाहिए। नासिर गनानी ने कहा कि दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय ब्रिटेन में फैले भेदभाव और पलायनकर्ताओं, विशेषकर मुसलमानों पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोकने में लंदन को अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र के विरुद्ध अमानवीय कार्रवाइयों में लिप्त ब्रिटेन और यूरोपीय देशों को इसका जवाब देना चाहिए। ऐसे में इन देशों को इस्लामी गणतंत्र ईरान के विरुद्ध बात करने का किसी भी प्रकार का नैतिक अधिकार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि परमाणु समझौते का उल्लंघनकर्ता देश के रूप में ब्रिटेन को इस बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने ईरान में उपद्रवियों का समर्थन करते हुए लिखा है कि वो सरकार जो अपनी जनता का दमन करती है वो निश्चित रूप से हमारे घटकों के लिए खतरा है। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अधिक विस्तृत कर रहा है, जो विश्व शांति के लिए खतरे की निशानी है।
सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान सीरिया का प्रभावशाली समर्थक है। लेबनान के अरबी भाषा के समाचार पत्र अल अखबार के अनुसार सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान हमारा विश्वसनीय समर्थक है। उन्होंने कहा कि लेबनान का हिजबुल्ला संगठन भी दमिश्क का रणनीतिक सहयोगी है। पत्रकारों से बात करते हुए बशार असद ने कहा कि ईरान ने अब तक सीरिया का समर्थन किया है। अमरीका के साथ संबंधों के बारे में सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि अमरीकियों के साथ कोई संपर्क नहीं है। उनका कहना था कि सीरिया की भूमि में मौजूद अमरीकी सैनिकों को यहां से निकाल बाहर करने के लिए हम दबाव बनाते रहेंगे। अरब देशों के साथ संबंधों के संदर्भ में सीरिया के राष्ट्रपति का कहना था कि सीरिया सरकार का ये मानना था कि दमिश्क के बारे में मिस्र का दृष्टिकोण अन्य अरब देशों की तुलना में अलग होगा, लेकिन इस बारे में काहिरा का दृष्टिकोण दोहरे मापदंडों पर आधारित है।
अमित शाह ने भारत के इतिहास को पुनः लिखे जाने पर बल दिया है। भारत के गृह मंत्री ने इतिहास के फिर से लिखे जाने की पुरजोर अपील की है। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार गुजरात चुनाव के बीच भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहासकारों से भारत के इतिहास को फिर से लिखने की अपील की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार उनके प्रयासों का समर्थन करेगी। अमित शाह ने दिल्ली में असम सरकार के एक समारोह में कहा कि मैं इतिहास का छात्र हूं, मैंने कई बार सुना है कि हमारे इतिहास को सही तरीके से पेश नहीं किया गया और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, हो सकता है कि यही सच हो, लेकिन अब हमें इसे ठीक करने की जरूरत है। अमित शाह ने यह भी कहा कि लोगों के व्यापक लाभ के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। गृह मंत्री ने विज्ञान भवन में मौजूद इतिहासकारों और छात्रों को आश्वासन दिया कि केंद्र उनके शोध में मदद करेगा। उन्होंने कहा, आगे आए शोध करें और इतिहास को फिर से लिखें। अहोम जनरल लचित बर फुकन की जयंती के 3 दिवसीय समारोह के दूसरे दिन अमित शाह ने कहा कि मैं आपसे पूछता हूं कि हम इतिहास को सही ढंग से और शानदार तरीके से पेश करने से कौन रोक रहा है। उन्होंने कहा है, मैं यहां बैठे सभी छात्रों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से अनुरोध करता हूं कि वे इस कहानी से बाहर निकलें कि इतिहास सही नहीं है।
इसराइली सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि ज़ायोनी पुलिस ने अवैध अधिकृत बैतुल मुक़द्दस में एक बम को खोजकर निष्क्रिय कर दिया है। अलमयादीन टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली पुलिस ने बैतुल मुक़द्दस शहर में स्विमिंग पूल के पास एक बम को खोजने और उसे निष्क्रिय करने का दावा किया है। पिछले हफ्ते बैतुल मुक़द्दस में 2 बम धमाके हुए थे जिसमें एक इसराइली की मौत हो गई थी और अन्य कई लोग घायल हुए थे। उसके बाद से इसराइल की सुरक्षा एजेंसियां कई बार चेतावनियां जारी कर चुकी हैं और ज़ायनियों के बीच भय का माहौल पाया जाता है। इसराइल के टीवी चैनल 7 की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायोनी पुलिस का कहना है कि पिछले बुधवार को 2 बम धमाकों के बाद से शहर में संदिग्ध चीजें मिलने की सैकड़ों सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं।
तुर्की के राष्ट्रपति के आधिकारिक निमंत्रण पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर अंकारा पहुंचे। इस्लामाबाद और अंकारा के बीच रक्षा एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की की यात्रा पर गए हैं। उनकी इस यात्रा का एक लक्ष्य तुर्की द्वारा निर्मित इन युद्धपोत का अनावरण करना है। पाकिस्तान और तुर्की के संबंध दशकों से चले आ रहे हैं। इस वर्ष तुर्की और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 19 चरण की वार्ता के बाद दोनों देशों ने PTA समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी समझौते के संदर्भ में अगस्त में तुर्की और पाकिस्तान के बीच $5 अरब का एक व्यापारिक समझौता भी हुआ है। सन 2021-2022 के दौरान दोनों पक्षों के बीच $883 मिलियन का व्यापार हुआ है।
रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा का कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अब पश्चिम को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। रूस के एक टीवी चैनल से बात करते हुए रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों को विभिन्न तरीकों से ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। यूरोपीय संघ के एक सदस्य के रूप में जर्मनी अमेरिका के साथ हाली अशांति के दौरान ईरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण और हस्तक्षेपपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। जर्मनी के अनुरोध के बाद अशांति के दौरान ईरान पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक आयोजित की गई, जबकि बर्लिन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर एक नज़र डालने से जर्मनी के काले कारनामे सामने आ जाते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति के आधिकारिक निमंत्रण पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दो दिवसीय यात्रा पर अंकारा पहुंचे। इस्लामाबाद और अंकारा के बीच रक्षा एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की की यात्रा पर गए हैं। उनकी इस यात्रा का एक लक्ष्य तुर्की द्वारा निर्मित एक युद्ध पोत का अनावरण करना है। सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि आतंकवाद और अलगाववाद को लाने वाले के षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 1987 में जो घटनाएं घटी थी उसकी जांच होनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि 1987 के चुनाव के बाद यहां आतंकवाद और अलगाववाद शुरू हुआ था।
आज भी कोर्ट ने उसके प्रोडक्शन वारंट इशू किए हैं क्योंकि उसने विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने से मना कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट डेट इज फिक्स्ड फॉर 22nd ऑफ दिसंबर।
श्रोताओ, ये तो थी हमारे आज की चर्चा के विषय। जर्मनी के अनुरोध के बाद अशांति के दौरान ईरान पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक आयोजित की गई, जबकि बर्लिन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर एक नज़र डालने से जर्मनी के काले कारनामे सामने आ जाते हैं। जर्मनी के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जैसे वरिष्ठ जर्मन अधिकारी ऐसी हालत में ईरान में मानवाधिकारों के घोर हनन का आरोप लगा रहे हैं, जब इस देश ने जानबूझकर ईरान पर थोपे गए युद्ध के दौरान इराक के बासी शासन को रासायनिक हथियारों के निर्माण के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में सामग्री और उपकरण प्रदान किए। समीक्षा पेश करें साथ ही अख्तर अब्बास।
यूरोपीय संघ के एक सदस्य देश के रूप में जर्मनी अमेरिका के साथ हालिया अशांति के दौरान ईरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण और हस्तक्षेपपूर्ण दृष्टिकोण अपनाए हुए है। जर्मनी के अनुरोध के बाद अशांति के दौरान ईरान पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक आयोजित की गई, जबकि बर्लिन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर एक नजर डालने से जर्मनी के काले कारनामे सामने आ जाते हैं। इस बैठक में जर्मनी सहित पश्चिमी देशों ने ईरान के खिलाफ समन्वित प्रचार हमले शुरू किए और तेहरान पर कई निराधार आरोप लगाए। जर्मन विदेश मंत्री अलाना पैरबॉक ने दावा किया कि हमने कई अवसरों पर तेहरान से अपील की थी कि वो दमनात्मक कार्रवाइयां रोके, लेकिन तेहरान ने उसके जवाब में दमन की कार्रवाइयां और भी तेज कर दी। इसी तरह जर्मन प्रधानमंत्री ओलाफ शुल्ज ने भी ईरान के हालिया अशांति का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि हमें ईरान में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान देना चाहिए और तेहरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जर्मनी के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जैसे वरिष्ठ जर्मन अधिकारी ऐसी हालत में ईरान में मानव अधिकारों के घोर हनन का आरोप लगा रहे हैं कि जब इस देश ने जानबूझकर ईरान पर थोपे गए युद्ध के दौरान इराक के बासी शासन को रासायनिक हथियारों के निर्माण के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में सामग्री और उपकरण प्रदान किए। जर्मनी और पश्चिमी देशों द्वारा इराक को दिए गए हथियारों की वजह से ही ईरान और इराकी कुर्दिस्तान के खिलाफ बड़ी मानवीय त्रासदियां सामने आई हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ईरानी अधिकारियों ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। تھوپے گئے یدھ میں عراق نے کل ملا کر 582 راسائنک حملے کیے جن میں پریوگاتمک سیمت بڑے پیمانے پر اور الٹرا وائڈ حملے شامل ہیں. ان حملوں میں 10,000 سے ادھک لوگ شہید ہو گئے جبکہ لگ بھگ 1,00,000 لوگ گھائل ہوئے اور انہیں نرنتر اپچار کی آوشکتا ہے جبکہ 2,50,000 لوگوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کاریکرم راجنیتک چرچا.
ترکیے کے راشٹرپتی کی آدھیکارک نمنترن پر پاکستان کے پردھان منتری 2 دیوسیہ یاترا پر انکارا پہنچے. پاکستان اور ترکیے کے سمبندھ دشکوں سے چلے آ رہے ہیں. اس ورش ترکیے اور پاکستان کے بیچ کوٹنیک سمبندھوں کے 75 ورش پورے ہو رہے ہیں. 19 چرن کی وارتا کے بعد دونوں دیشوں نے پی ٹی اے سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے. اسی سمجھوتے کے سندرب میں اگست میں ترکیے اور پاکستان کے بیچ $5 ارب کا ایک ویاپارک سمجھوتا بھی ہوا تھا. سمیکشا پیش کریں ساتھ ہی قائم رضوی.
ترکیے کے راشٹرپتی کے آدھیکارک نمنترن پر پاکستان کے پردھان منتری 2 دیوسیہ یاترا پر انکارا پہنچے. اسلام آباد اور انکارا کے بیچ رکشا ایوم آرتھک سمبندھوں کو مضبوط کرنے کے ادیش سے پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف ترکیے کی یاترا پر گئے. ان کی اس یاترا کا ایک لکش ترکی دوارا نرمت ایک یدھ پوت کا اناورن کرنا ہے. پاکستان اور ترکیے کے سمبندھ دشکوں سے چلے آ رہے ہیں. اس ورش ترکی اور پاکستان کے بیچ کوٹنیک سمبندھوں کے 75 ورش پورے ہو رہے ہیں. 19 چرن کی وارتا کے بعد دونوں دیشوں نے پی ٹی اے سمجھوتے پر ہستاکشر کیے. اسی سمجھوتے کے سندرب میں اگست میں ترکی اور پاکستان کے بیچ $5 ارب کا ایک ویاپارک سمجھوتا بھی ہوا تھا. سن 2021-22 کے دوران دونوں پکشوں کے بیچ $883 ملین کا ویاپار ہوا. شہباز شریف کو اس سمے کئی پرکار کے سنکٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن میں آرتھک اور راجنیتک سنکٹ سروپری ہیں. پاکستان میں پائی جانے والی راجنیتک استھرتا نے سمسیاؤں کو ادھک جٹل بنا دیا ہے. شہباز شریف کی سرکار نے ورتمان آرتھک سنکٹ سے نکلنے کے ادیش سے انتراشٹری مدرا کوش سے ऋण لینے کی یوجنا بنائی ہے. اس کے اترکت اس سمبندھ میں پاکستان اپنے متر دیشوں کے ساتھ بھی وچار ومرش کر رہا ہے جس میں ایک ترکیے بھی ہے. ترکیے سے پاکستان کے سمبندھوں کے سندرب میں شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے مدعے پر اسلام آباد کا سمرتھن کرنے کے لیے ہم ترکیے کے آبھاری ہیں. شیتری اور انتراشٹری مدوں پر دونوں دیشوں کے دشٹیکون بہت ہی سمان ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکیے کے ورتمان سمبندھوں کا استر ابھی بھی دونوں دیشوں کے بیچ پائے جانے والے سہیوگ کو پرتیبمبت نہیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم نے ابھی اپنا دھیان آرتھک سہیوگ پر کیندرت کر رکھا ہے. ویسے تو پاکستان اور ترکیے کے سمبندھ دشکوں پرانے ہیں کنتو سن 2017 میں امریکہ کے ساتھ ان دونوں دیشوں کے سمبندھوں میں تناؤ کے بعد انکارا اور اسلام آباد کے بیچ سہیوگ میں تیزی سے وردھی دیکھی گئی. واشنگٹن کی اور سے ترکی اور پاکستان کے ورد پرتیبندھوں نے ان دونوں دیشوں کو نکٹ سے سہکاریتا کرنے کا اوسر پردان کر دیا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ترکیے تتھا پاکستان کے بیچ سہیوگ کو کبھی کبھی شنکا کی دشٹی سے بھی دیکھا جاتا ہے. اس بارے میں شوت کرتا کلسوم آصف کا کہنا ہے کہ کیندری ایشیا کو اس سمے طرح طرح کی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں آرتھک سنکٹ اور آتنکواد جیسے ابھی شاپ بھی شامل ہیں. حالانکہ اس سمے پاکستان نے آرتھک سہیوگ پر ہی فوکس کر رکھا ہے. کلثوم آصف کے انوسار اب سمے آ گیا ہے کہ پاکستان ایک بار اپنے بھیتر نگاہ کرے اور دیش کو سنکٹ سے نکالنے کے لیے بہت ہی گمبھیرتا کے ساتھ ایک دیرگھ کالین یوجنا کو تیار کرے۔
سجاد غنی لون نے کہا ہے کہ آتنکواد اور الگاؤواد کو لانے والے کے شڈیانتر کی جانچ ہونی چاہیے۔ اسی پرکار انہوں نے کہا کہ 1987 کے چناؤ کے بعد یہاں آتنکواد اور الگاؤواد شروع ہوا تھا۔
جموں کشمیر پیپلز کانفرنس، جس کے ادھیکشتا سجاد غنی لون کر رہے ہیں، نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں الگاؤواد اور آتنکواد کو لانے والے کے شڈیانتر کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ انہوں نے آج ایک سبھا کو سمبوجت کرتے ہوئے کہا کہ ورش 1987 میں جو گھٹنائیں گھٹی ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 87 کے الیکشن کے بعد یہاں پر الگاؤواد اور آتنکواد شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس سمے کی سرکار نے ووٹنگ میں گڑبڑ نہیں کی ہوتی تو یہ پرستھتی جموں کشمیر کو نہیں دیکھنی پڑتی۔ ان کا سیدھا نشانہ نیشنل کانفرنس کی اور ہے۔ یہاں یہ بات الیکھنی ہے کہ مسلم یونائٹیڈ فرنٹ نے 1987 کے الیکشن میں بھاگ لیا تھا، اگرچہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بیشتر سیٹوں پر وہ کامیاب ہوئے، پرنتو انہیں صرف 4 سیٹیں دی گئی تھی۔ سجاد غنی لون نے نئی دہلی سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی جانچ کریں اور پتہ لگائیں کہ اس کے پیچھے کیا شریانتر تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل وہی نیتا کشمیر کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس استھتی پر کشمیر کو پہنچایا۔ انہوں نے PDP اور نیشنل کانفرنس پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں دل کشمیر کے لوگوں کے ہت میں کوئی بھی کاریہ نہیں کرتے ہیں اور صرف ان کا کاریہ پرشاسن حاصل کرنا ہے۔ اس بیچ JKLF کے ادھیکش اور الگاؤوادی نیتا محمد یاسین ملک کو ایک بار پھر کورٹ میں پروڈیوس نہیں کیا گیا، انہیں ویڈیو لنک کے دورہ ہی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اس اوسر پر CBI کے ایڈوکیٹ نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا
آج بھی ایشو کیے ہیں کیونکہ اس نے وٹنسز کو کراس ایگزامن کرنے سے منع کر دیا ہوا ہے، تو نیکسٹ ڈیٹ از فکسڈ فار 22nd آف ڈسمبر۔
سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔ اب پرستوت ہے اگلا کاریکرم، اجول بھوشیہ۔
اجول
دوستو، کاریکرم اجول بھوشیہ کی ایک انیک کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج ہم پچھلے 4 دشکوں کے دوران ایران کی سینیہ اپلبدھیوں کی چرچا کریں گے۔
دوستو، پچھلے کارکرم میں ہم نے الیکھ کیا تھا کہ 8 ورشیہ ایران عراق یدھ کے بعد مادھی پور میں گھٹنے والی مہتوپورن گھٹناؤں میں سے ایک داعش جیسے تکفیری آتنکوادی گٹوں کا گٹھن اور انہیں ایران اور اسلامی پرتیرودھ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنا تھا۔ ان گٹوں کا نیتوتو امریکہ اور ضانوی شاسن کر رہے تھے۔ اس کے باوجود امریکہ نے چھیتر میں آتنکواد سے مقابلے کے بہانے داعش کے خلاف یدھ کا ناٹک رچا اور اس ادیش کے لیے ایک انتراشٹریہ گٹھ بندھن کا بھی گٹھن کر لیا، لیکن امریکہ اور ضانوی شاسن کے خفیہ سمرتھن کے کارن داعش نے بہت ہی کم سمے میں عراق اور سیریا کے ادھکانش علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اپنی تتھا کتھت خلافت کی استھاپنا کا اعلان بھی کر دیا۔ میڈیا نے داعش کو ایک بہت ہی شکتیشالی اور خونخوار گٹ کے روپ میں پیش کیا۔
یدھ کے میدان میں عراق کے ایک ماتر سمرتھک کے روپ میں ایران نے تیزی سے اپنے پڑوسی دیش کی مدد کی اور اس یدھ میں عراقی ادھیکاریوں کا منوبل بڑھایا۔ داعش کے خلاف یدھ میں عراق کی جیت میں ایران نے مہتوپورن اور نرنائک بھومیکا نبھائی۔ واسطو میں ایران وہ پہلا دیش تھا جس نے داعش کے خلاف عراق کی مدد کی۔ सीरिया और इराक में संकट की शुरुआत से ही इन देशों की सरकारों के अनुरोध पर आईआरजीसी की कुद्स ब्रिगेड के पूर्व कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी ने मोर्चा संभाल लिया था। कुद्स ब्रिगेड ने इन देशों के जवानों की प्रतिभा को समझा और उन्हें आतंकवादी गुटों से लड़ने के लिए तैयार किया। परिणाम स्वरूप इराक में हश्दुशाबी और सीरिया में स्वयंसेवी फोर्स का गठन हुआ।
शहीद सुलेमानी ने न सिर्फ दाइश को जंग के मैदान में पराजित करने में अहम भूमिका निभाई बल्कि तकफीरी विचारधारा और चरमपंथी सोच को हराने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये एक बड़ी वैश्विक उपलब्धि थी जिससे अब विश्व एक लंबे समय तक मुक्ति पा चुका है। जनरल कासिम सुलेमानी ने सिर्फ इराक में दाइश के खिलाफ लड़ाई की कमान नहीं संभाली थी बल्कि सीरिया में उन्होंने दाइश की कमर तोड़ दी थी। लोगों ने हलब में दाइश की पराजय के बाद वहां के खंडरों में जनरल सुलेमानी को टहलते हुए देखा था। सीआईए के एक पूर्व अधिकारी जॉन मैकवेयर का कहना था कि सीरिया में अल कुसैर की लड़ाई के नतीजे में सीरियाई सेना ने इस रणनीति के शहर को दाइश के कब्जे से आज़ाद करा लिया और ये आज़ादी सीरिया में युद्ध का अहम मोड़ साबित हुई। ये लड़ाई जनरल कासिम सुलेमानी की कमान में लड़ी गई थी।
वास्तव में इस्लामी क्रांति की सफलता के तुरंत बाद ही रक्षा क्षेत्र में ईरान ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे जिसके परिणाम स्वरूप आज ईरान क्षेत्र का सबसे अधिक शक्तिशाली देश बन चुका है। हालांकि क्रांति से पहले ईरानी सशस्त्र बल शस्त्रों और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में पूरी तरह से पश्चिम पर निर्भर थे। पहलवी शासन ने अमेरिका के साथ एक सुरक्षा समझौता किया था जिसके तहत देश में 50,000 सैन्य सलाहकार और विशेषज्ञों को तैनात किया जाना था। दूसरी ओर ईरानी विशेषज्ञों को किसी तरह की रचनात्मकता दिखाने की अनुमति नहीं थी। उदाहरण स्वरूप वायुसेना में ईरानी विशेषज्ञों को उन जगहों पर जाने की अनुमति तक नहीं थी जहां F-14 लड़ाकू विमानों को रखा जाता था और उनकी मरम्मत की जाती थी। लड़ाकू विमानों की देखभाल और मरम्मत भारी खर्चे पर सिर्फ अमरीकी विशेषज्ञ ही अंजाम दे सकते थे।
इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद हालांकि दिन प्रतिदिन प्रतिबंधों में इजाफा होता जा रहा लेकिन इसके बावजूद हथियारों के निर्माण और सैन्य उपकरणों के उत्पादन में ईरान ने आश्चर्यजनक प्रगति की। ग्लोबल फायर पावर संस्था का कहना है ईरान की सेना विश्व में 23वें पायदान पर है। वॉशिंगटन फाउंडेशन की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार निश्चित रूप से विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जो मीडियम और लॉन्ग रेंज के मिसाइलों और रडारों का निर्माण कर सकते हैं। अगर ईरानी भी रास्ते में मौजूद रुकावटों को दूर कर लेते हैं तो भविष्य में वायु रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे बल्कि वे अपनी वायु रक्षा प्रणालियों की तलाश और बावर का निर्यात भी कर सकते हैं।
इस्लामी क्रांति से पहले अमेरिका अपनी नीतियों के मुताबिक ईरानी सैनिकों को ट्रेनिंग दिया करता था। उसका ये प्रयास होता था कि अमेरिकी रीतियों के तहत ईरानी सैन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाए। मई 1948 में ईरानी वायुसेना के अधिकारियों और गैर कमीशन अधिकारियों का पहला समूह विशेष प्रशिक्षण के लिए अमरीका गया। 1974 तक 11,000 ईरानी सैन्य अधिकारियों और कर्मियों को अमेरिका में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा अमेरिका ने इसराइली सेना द्वारा ईरानी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए जायोनी शासन से समझौता किया था। उनका ये प्रयास होता था कि प्रशिक्षण के दौरान ईरानी अधिकारी अपनी संस्कृति को लेकर अपमानित महसूस करें और अमेरिकी संस्कृति को श्रेष्ठ समझें। इस्लामी क्रांति की सफलता से एक महीने पहले ईरान में जन आंदोलन की समीक्षा के लिए तेहरान की यात्रा करने वाले अमरीकी सैन्य अधिकारी जनरल हाइजर ने लिखा था, अमेरिका में पले बड़े जनरल अमीर हुसैन रबी उस देश से हमेशा प्यार करते थे। اسی لیے اسلامی کرانتی کے نیتا امام خمینی کہا کرتے تھے، ہماری سینا کو پشچم پر نربھر ایک غیر راشٹریہ سینا کے روپ میں پرشکشت کیا گیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سینا سوتنتر ہو اور اسرائیل کا اس پر کوئی نینترن نہ ہو، اسی طرح سے امریکہ کا بھی کوئی نینترن نہ ہو۔
اسلامی کرانتی کے آشر آواز سے کرانتی کے بعد سے ایرانی سینکوں کا پرشکشن ایرانی ادھیکاریوں دوارا کیا جاتا ہے۔ آئی آر جی سی اور سینا کے کمانڈروں نے سرکشا بلوں کو ٹریننگ دینے اور ویوستھا بنانے میں اچھی سفلتا حاصل کی ہے۔ اس ٹریننگ کے نتیجے میں آج ایرانی سینیہ وشیشجھ میزائل، ٹینک اور ویمان بنا رہے ہیں۔ ادھارن کے لیے سبھی پرکار کے ہتھیاروں اور سینیہ اپکرنوں کا نرمان، جس میں سبھی پرکار کے ویمانوں کا نرمان اور رڈار کی پکڑ میں نہیں آنے والے سپر سونک لڑاکو جیٹ ویمانوں اور پرشکشن ویمانوں کا اتپادن اور نرمان ایران میں کیا جا رہا ہے۔ ڈرون ویمانوں اور ہیلی کاپٹروں کے اتپادن کے علاوہ ویمانوں اور ہیلی کاپٹروں کی مرمت بھی ایرانی سینیہ وشیشجھوں کے ہاتھوں کی جا رہی ہے۔
ایران نے پنڈوبیوں کے نرمان، جہازوں اور یدھ پتوں کے نرمان اور مرمت، ہوور کرافٹ اور سپیڈ بوٹوں کے نرمان میں سفلتا حاصل کی ہے۔ ایران کی تھل سینا نے بھی سبھی پرکار کے بختر بند واہنوں اور ٹینکوں کے نرمان کی تکنیک حاصل کر لی ہے۔ آج ایرانی سینا بھاری ہتھیاروں اور آدھونک توپوں کے اتپادن میں آتم نربھرتا حاصل کر چکی ہے۔ وایو رکشا کے کھیتر میں اس نے وبھن پرکار کی ویمان بھیدی رکشا پرنالیوں اور ہتھیاروں کا اتپادن کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران دور سنچار ادیوگ، وائرلیس آپٹیکل ادیوگ اور سادھارن کیمروں اور نائٹ ویژن گوگلز کے نرمان میں دنیا کے اگرنی دیشوں میں سے ایک ہے۔ ان میں سے کچھ ہتھیار 32 دیشوں کو نریات کیے گئے ہیں۔
کرانت سے پہلے ایران کے سینے معاملوں میں امریکہ کے ہستکشیپ کا ایک کارن ایران دوارا ودیشوں سے ہتھیار خریدنے کی نیتی کا نردھارن کرنا تھا۔ وہ خود کو ایرانی سینا کا مالک سمجھتے تھے۔ ادھارن کے لیے امریکہ کے پورو اپ ودیش منتری جارج بال کا کہنا ہے، ورش 1953 سے جب شاہ کو ستا پھر سے سونپی گئی 1972 تک ہم نردھارت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شاہ کو کن ہتھیاروں کی ضرورت ہے اور کن ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ 19 ورشوں میں شاہ نے امریکہ سے 1 بلین اور 300 ملین ڈالر سے زیادہ کے ہتھیار نہیں خریدے تھے، لیکن جب نکسن اور کسنجر نے شاہ کو چھوٹ دے دی تو شاہ نے امریکہ سے اگلے 7 سال میں 20 گنا سے ادھک ہتھیار خریدے۔ ان 7 ورشوں میں ایران نے 14 لڑاکو ویمان خریدے، جبکہ اس نے یہ ہتھیار اپنے کسی پشمی سہیوگی کو بھی نہیں دیا تھا۔ حالانکہ ایران کو یہ لڑاکو ویمان بہت ہی ادھک قیمت پر بیچے گئے تھے۔ نکسن کی چھیتریہ نیتی میں شاہ کو مدھیہ پور میں امریکی تھانے دار کی بھومکا دی گئی تھی، لیکن امریکی ادھیکاریوں کی انومتی کے بنا ایرانی ادھیکاریوں کو ان ہتھیاروں کے استعمال کی انومتی نہیں تھی۔ کرانتی کے بعد دیش سے امریکی سینیہ صلاحکاروں کے نکلنے کے بعد امریکی ادھیکاری کہتے تھے کہ ایرانی امریکی ہتھیاروں وشیش روپ سے F-14 جیٹ ویمانوں کا استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن ایران عراق یدھ شروع ہونے کے بعد ایرانی ادھیکاریوں نے ان آدھونک امریکی ہتھیاروں کا استعمال کرنے میں سفلتا حاصل کر لی۔
تو دوستو، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
श्रोताओं, आप प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम ईरान भ्रमण।
ईरान
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम तेहरान प्रांत की एक अन्य काउंटी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पाकदश्त। फारसी भाषा में काउंटी को शहरिस्तान कहा जाता है। तो आइए इस सैर पर हमारे साथ चलिए। हम तेहरान की दक्षिणी पूर्वी काउंटी पाकदश्त की सैर पर निकले हैं। पाकदश्त की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो इसके उत्तर में अलबुर्ज पर्वत और तमावंद पर्वत है, पश्चिम में तेहरान नगर रह शहर है, दक्षिण में वरामीन काउंटी और पूरब में सेमनान प्रांत स्थित है।
प्राचीन काल में पाकदश्त एक छोटा सा गांव था जो रे बियाबान में स्थित था और उसे मामाजंद कहा जाता था। इस इलाके में अलग अलग समय में अलग अलग जातियों ने जीवन गुजारा और यहाँ बहुत सी जंगें भी हुईं। पुरातन विदों ने इतिहास से पहले के दौर से संबंधित अवशेषों का अध्ययन किया है जो पाकदश्त में मिले हैं। इस अध्ययन से पता चला कि पाकदश्त की सभ्यता बहुत पुरानी है और इसकी तुलना रे की सभ्यता से की जा सकती है। रे शहर दुनिया के प्राचीनतम शहरों में गिना जाता है। इसका इतिहास आर्यों के ईरान में प्रवेश के काल से जा मिलता है।
अध्ययनों से पता चलता है कि इस इलाके में फिलिस्तान और महमूदाबाद नामक टीलों की प्राचीनता 7000 साल से ज़्यादा है। इसी तरह इलाके के बारे में किए गए आरंभिक अध्ययनों से ये मालूम हुआ है कि 1250 से 1300 साल ईसा पूर्व के समय में इस इलाके में मिट्टी के बर्तनों के लिए विख्यात सभ्यता काफ़ी पनप चुकी थी। पाकदश्त में मौजूद खंडरों और वीरानों से फिरोजी, नीले, सुनहरे और दूसरे अनेक रंगों के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। ये टुकड़े अपनी खामोश जबान में अतीत की बहुत पुरानी दास्तानें बयान करते हैं। ये पाकदश्त के इलाके के बेहद प्राचीन काल में बसे लोगों और जातियों की सभ्यता और कला का आईना है। पाकदश्त के अत्यंत प्राचीन इतिहास का पता इस इलाके में मौजूद गांवों के नामों से भी चलता है। इनमें मामाजंद और यब्रो वगैरह गांवों के नाम लिए जा सकते हैं। शोधकर्ता इन नामों को बड़े प्राचीन काल से संबंधित मानते हैं।
पाकदश्त तेहरान प्रांत की बेहद खूबसूरत काउंटियों में से एक है। यहाँ जगह जगह सुंदर फूलों की मनमोहक खुशबू आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है और पूरे वातावरण में सुगंध बिखेरती है। अगर आपको फूलों और वनस्पतियों से लगाव है तो आप पाकदश्त की सैर का मौका हरगिज हाथ से जाने न दीजिए। पाकदश्त में अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमतें हैं, जैसे मंद गति से बहती जौजरुद नदी, दिलनशी जलवायु और मौसम, उपजाऊ ज़मीन। यही वजह है कि इस इलाके के बहुत सारे लोग फूलों की खेती करते हैं। दरअसल यहाँ फूलों की ताजगी और मरुस्थल का वातावरण एक अजीब ही नज़ारा पेश करते हैं और यहाँ घूमने के लिए जाने वाले लोग और स्थानीय निवासी इस वातावरण में देर तक खोए रहते हैं।
पाकदश्त काउंटी में 17,000 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती की ज़मीनें हैं और इसे तेहरान प्रांत के कृषि केंद्रों में गिना जाता है। इसमें से 1500 हेक्टेयर के भूभाग पर फूलों की खेती होती है और हर साल इन फुलवारियों में 1 अरब से अधिक फूल खिलते हैं जिन्हें दुनिया के अनेक देशों को निर्यात किया जाता है।
पाकदश्त में फूलों की खेती को खास रौनक दिलाने में एक गाँव का हाथ बहुत है। इस गांव का नाम भी इसी वजह से गुलजार रखा गया है। 200 साल पुराना ये गांव पाकदश्त शहर से 4 किलोमीटर और तेहरान शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है।
दोस्तों, पुराने जमाने में गुलजार गांव एक दुर्ग के रूप में था जिसमें गांव के लोग जीवन गुजारते थे। चूंकि इस गांव की शक्ल दुर्ग जैसी थी, इसीलिए इलाके के लिए इसे हिसारे कुलात कहते थे। वक्त गुजरा तो धीरे धीरे यहाँ फूलों की खेती का चलन बढ़ता गया और फिर इसका नाम गुलजार गांव पड़ गया। गुलजार गांव में भूमिगत जल भंडार हैं, जिनकी वजह से इस इलाके में खेती के लिए बड़ा उपयुक्त वातावरण है और फूलों की खेती बहुत ज़्यादा आम हो गई है। इन्हीं सारे कारणों से गुलजार गांव इस काउंटी का बेहद सुंदर और मनमोहक गांव बन गया है।
आपके लिए ये जानना भी रोचक होगा कि तेहरान प्रांत में फूलों और सुंदर पौधों की पैदावार का 50% से अधिक भाग इसी एक गांव से आता है और पूरे प्रांत में वितरित किया जाता है। अगर पूरे देश के स्तर पर देखा जाए तब भी फूलों और पौधों की पैदावार में ये ईरान का बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। गुलजार गांव में फूलों का बाजार बड़ा व्यस्त बाजार है, क्योंकि यहाँ बड़े उचित दाम पर फूल और पौधे मिल जाते हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से वे ज़्यादा दिनों तक तरोताज़ा रहते हैं। गुलजार गांव में पैदा होने वाले फूल अगर टहनी के साथ तोड़े गए हैं तो 40 से 45 दिन तक ताज़ा बने रहते हैं, और अगर उन्हें गुलदान में रख दिया जाए तो 3 महीने तक इसकी खुशबू वातावरण में फैलती रहती है।
यहाँ पैदा होने वाले फूलों की बात की जाए तो गेरानियस, रोज, पिंक, ट्रांसवॉल, डेजी, हियाकिंथ, क्रिसैंथेमम, लेस लीफ और आर्किड्स जैसे बड़े फूल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रजातियों की विश्व स्तर पर अपनी खास पहचान है।
हमने बताया कि पाकदर्श ईरान में फूलों और पौधों के उत्पादन का केंद्र है। अब हम इसके बाद आपको ये बताएंगे कि इस काउंटी की ऐतिहासिक इमारतें क्या हैं।
नासिरिया जमालाबाद इमारत, यब्र प्राकृतिक ग्लेशियर, जीतू पुल, फेरुनाबाद ऐतिहासिक आबादी, खातूनाबाद सराय को पाकदश्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों में गिना जाता है।
पाकदश्त की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों में एक यब्र दागलान ग्लेशियर है, जो इसी नाम के गांव में पाकदश्त से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। यब्र दागलान के बारे में आपको बताने से पहले हम ये बता दें कि ईरान में इस तरह के ग्लेशियर का इतिहास क्या है।
दोस्तों, लगभग 2000 साल पहले ईरानियों ने बियाबान के भीतर बर्फ बनाने का बड़ा विचित्र और कारगर तरीका खोज लिया। ये तरीका ग्लेशियर का निर्माण था। शंकुआकार इमारतें बनाकर उसमें बर्फ को सुरक्षित रखा जाने लगा। ये इमारतें देखने में भी बड़ी खूबसूरत लगती थीं और इनकी उपयोगिता अपने समय में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इस ढांचे के बिल्कुल ऊपरी भाग में एक चीज बनाई जाती थी जो चिमनियों की रूप की होती थी। यही चिमनी हवा का प्रभाव और प्रवाह ग्लेशियर के भीतर लाती थी। इस ढांचे को सारूज नाम के पदार्थ से बनाया जाता था, जिसमें रेत, मोरंग, मिट्टी, अंडों के छिलके, चूना, बकरियों के बाल और राख शामिल होती थी। जब हवा चिमनी के रास्ते से ग्लेशियर के भीतरी भाग में पहुंचती थी तो वहां रखी बर्फ से टकराती थी और ग्लेशियर के भीतर पूरे वातावरण को ठंडा कर देती थी। यहां तक कि उस समय भी जब तपते सूरज की किरणें सीधे ग्लेशियर पर पड़ती थीं, इसके भीतर का वातावरण बहुत ही ठंडा बना रहता था। इसका नतीजा ये होता था कि ग्लेशियर के भीतर रखी बर्फ सुरक्षित बनी रहती थी। रोचक बात यह है कि ग्लेशियर के भीतर बर्फ जाड़े के मौसम में बनती थी और पूरी गर्मी इन ग्लेशियर के भीतर सुरक्षित रहती थी। जाड़े का मौसम बर्फ बनाने के लिए बहुत उचित होता है। बर्फ बनाने की प्रक्रिया इस तरह पूरी की जाती थी कि भूमिगत नालियों से, जिन्हें ईरान में कनात कहा जाता है, पानी बहता हुआ कुछ जगहों पर जमने लगता था। ग्लेशियर के भीतर भी यही पानी जाकर जम जाता था। कभी कभी यह पानी भूमिगत नालियों के बजाय पहाड़ी पर जमी बर्फ के पिघलने से मिलता था।
ये पुराने ग्लेशियर शंकु आकार होते थे और इनकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर होती थी। ग्लेशियर का फैलाव 54 मीटर पर होता था और दीवारों की मोटाई 2 मीटर होती थी। दीवार की इस मोटाई की वजह से ग्लेशियर गर्मियों में ठंडे बने रहते थे और बर्फ पिघलने से बची रहती थी। इस ग्लेशियर का प्रवेश द्वार पश्चिमी भाग में है, जो मेहराब नुमा है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद ईंटों के बने घुमावदार जीने नजर आते हैं, जो बेसमेंट में जाने के लिए हैं।
दोस्तों, बर्फ रखने के लिए बनाया गया हौज सर्दियों में भर जाता था और जम जाता था। फिर इस बर्फ को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता था और ग्लेशियर के एक भाग में रख दिया जाता था। इसके आखिरी हिस्से में एक कुआं होता था, जहां बर्फ के थोड़ा बहुत पिघलने से निकलने वाला पानी चला जाता था। इन ग्लेशियरों से बाद में ज़रूरत के समय बर्फ निकाली जाती थी और लोगों को बांटी जाती थी। यब्र दाग़लान ग्लेशियर के बारे में बताते हैं कि इसे काजारिया दौर में बनाया गया था और गलीन नाम की एक महिला ने गांव के लोगों के इस्तेमाल के लिए इसका निर्माण करवाया था।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक हमें अनुमति दीजिए।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।